شهداء قبل رمي بو كل جسم شهداء خاصة بس عم تيجي تدافع أو شيء خاص شلون يجي يدافع
چیز جو کربلا کی طرف لے کر جاتی ہے وہ خود
से जो शौदा है सलाम ने फरमाया मक्का को तर करते हुए, पहली चीज इमाम ने फरमाई अगर तुम बसल कर सकते हो अपने खून का, यानी अपना खून जो है वो खर्च कर सकते हो, अपना खून अपनी जान दे सकते हो, पहली शर्त है। पहली शर्त करबला के कारवान में शामिल होने की अपना खून है। अब इंसान को खुद सबसे ज़्यादा इंसान प्यारा होता है, इंसान ज़िंदगी में जितनी मेहनत करता है वो अपनी ज़ात के लिए करता है, अपने आराम के लिए, अपनी आसाइश के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपने पैसे के लिए सब करता है। आज दुनिया जो इंसान को बना रही है वो इसी के मुकाबले में है। बस मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गहरे मफाइन नहीं होंगे, उन्होंने समझने में मुश्किल हो जाए। दुनिया बिल्कुल इसके मुकाबले में खड़ी हुई है। दुश्मन बता के नहीं कहता कि मैं दुश्मन हूँ, दुश्मन अगर बता के ये कहे कि ये काम मैं आपके खिलाफ कर रहा हूँ, आप उसके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। आपके घर आपके घर में कोई आए और आपको जहर दे, आप उसका क्या हल करेंगे? लेकिन कोई आपको चॉकलेट दे और उसके अंदर जहर हो तो फिर आप क्या करेंगे? आप खाएंगे? आप कहेंगे कि कितना अच्छा हमारा दोस्त है, जानने वाला है, हमारे लिए स्वीट्स लेकर आया है। दुनिया यही कर रही है, दुनिया नारे मार कर नहीं बता रही कि वो आपके कौन से मफाहिम के मुकाबले में है। दुनिया कवर और कोटेड होकर इन मफाहिम का मुकाबला कर रही है। जहाँ इमाम कह रहे हो कि अपनी जान दे सकते हो, पहली चीज है। दुनिया क्या कर रही है? दुनिया इंसान को कीमती बना रही है। दुनिया कहती है कि इंसान सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया जो फलसफा क्रिएट कर रही है और हमारे लिए जो कॉर्पोरेट कल्चर, ब्रांडिंग, ये सब जो दुनिया ने हमारे लिए बनाया हुआ है, आसाइश का सामान, ये सब क्या है? ये इंसान महवर है, यानी इंसान इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सब कुछ है। यानी क्या कर रहे हैं? इंसान को ये बावर कराया जा रहा है, यकीन कराया जा रहा है कि देखो तुम बहुत कीमती हो, है कीमती इंसान, इसमें शर्त नहीं कि इंसान कीमती नहीं है, लेकिन तुम्हारी यही जिंदगी कीमती है। यानी ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी माता परस्ती, तुम्हारा आसाइश, तुम्हारा आराम, तुम्हारा नाम, तुम्हारी शोहरत, ये सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सब कुछ है, आखिरत पता नहीं है कि नहीं है। बोल नहीं रहा कि हम आखिरत के मुकाबले में है, नहीं कहा कि हम आखिरत के नहीं, असल आपकी मादे को इतना फ्लोरिश कर रहा है। यानी जब आपको कोई चीज छुपानी हो तो आप दूसरी चीज को इतना दिखाते हैं कि वो छुप जाए। अब वो दुनिया को इतना दिखा रहा है कि इंसान आखिरत से गाफिल हो गया है। उसे पता ही नहीं कि आखिरत क्या है, उसे पता ही नहीं आखिरत की कीमत क्या है, आखिरत में दर्जात क्या है, मरातिब क्या है, बरज़ख है, नहीं दुनिया। अब आप देख लें हमारी दुनिया कोऑपरेट है पूरी, हमारे पूरे लिबास देख लें, हमारी जिंदगी देख लें, हमारी आसाइश, हम इंसान की कीमत भी उसके पहने हुए लिबास से, उसके हाथ से, उस चीज़ों से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी कीमत को मादे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जबकि इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ चाहते हो पहली चीज अपना खून दो, अपनी जान दो। यानी अगर कीमती होना चाहते हो तो पहले अपने आप को कुर्बान करो। दुनिया क्या कह रही है? अपने आप को बिल्कुल कुर्बान नहीं करना, बिल्कुल जरा सी मुश्किल हो। यानी बेहसी का ये आलम आपने इस वायरस ने देखा। वायरस ने क्या बोला? अपने बूढ़े माँ बाप से दूर हो जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप के गरीब में जाओ। यानी क्या है? यानी आपको बेहिस कर रही है। यानी कयामत नहीं है। कयामत में मौला का बयान माना जाता है, मेरे मोमिन में क्या फरमाते हैं, रोज़े कयामत उस हालत में तुम्हारी माओ बहनों के बैन कुछ नहीं कर पाएंगे, हर शख्स अपनी तरफ मुतवज्जा होगा। यानी आपको उस स्ट्रक्चर से कि जो कयामत में लेके जाएगा उससे तोड़ रहे हैं, आपकी जाहिरी दुनिया को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। आज आप देख लेंगे दुनिया का जो सोशल मीडिया है, जिस तरह का भी है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाओ, आप खुद खूबसूरत हैं, आप सारी चीज़ें अच्छी दिखाएं, आप ही की गिफ्ट सारी चीज़ें घूम रही हैं, आपके लाइक्स कितने हैं, आपके व्यूज कितने हैं, आप सब कुछ हैं, दूसरे आप किसी को देखते नहीं हैं। आप अगर कोई हो तो आप उसके खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट बनाना है, और वो भी मानते हो सिर्फ मेटरिस्टिक वर्ल्ड। आज आज नौजवान भी कैसे पहचाने जाते हैं? फॉलोअर्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, कलाम क्या है, कैसा कलाम है, पैगाम है कि नहीं है, आपके सामने आ जाओ, हम किस तरह हमारा भाषण यही है, हम कंपेयर कैसे करते हैं? बेटा मिस्टिक वर्ड्स है, माते से माता कमाल में नहीं लेके जा सकता। दुनिया वसीला है आखिरत का, अगर खुदा के लिए इस्तेमाल की जाए। हर वो चीज दुनिया है जो खुदा से दूर कर दे, वरना खुदा ने इसी कायनात में कहा कि मेरी निशानियां हैं, ये आयतें हैं, चांद सूरज मेरी निशानियां हैं। ये तुम्हें निशानी का मतलब क्या होता है? आयात इलाही किसे कहते हैं? यानी वो जो तुम्हें मेरी तरफ लेकर आए, यही अच्छी औलाद खुदा की तरफ लेके जा सकती है। अच्छी तरबियत, वो माल जो खर्च किया जाए खुदा की राह में, खुदा की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन हर वो चीज चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो, इंसान को अगर खुदा से दूर कर देते वो दुनिया है। ये दुनिया का मफहूम है, इसको समझे। मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा आज सारी बातें, सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया को समझने की कोशिश करें। इस दुनिया को जिस दौर में हम रहते हैं, ये जो साइबर वर्ल्ड है, इसको समझे। ये मद्दे मुकाबल में है उस तालीमात की जिसे इमाम ने हमें दिया है। ये इंसान के वजूद को परवाज नहीं करने देगा, ये उसे दबा रहा है। और यही उसने इतना बड़ा सिस्टम कर दिया है। और ये ना समझे कि ये सो रहे हैं या इन्होंने ऐसे ही सो के उठे तो इन्होंने ये सब कुछ डिजाइन कर दिया। नहीं, इनका प्लान है, स्ट्रक्चर्ड है, ये कनेक्टेड है। इनके न्यूज चैनल से लेकर, इंटरटेनमेंट से लेकर, सिनेमा से लेकर, एनिमेशन से लेकर, टीवी एडवर्टाइजमेंट से लेकर, सब कुछ कनेक्टेड है। किसके मुकाबले में? दिमाग के मुकाबले में। इन्हें किसी से कोई खौफ नहीं है, इन्हें वक्त के हुसैन से खौफ है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो 61 हिजरी में कर्बला आया था, वो करोड़ों के लोगों को, करोड़ों के मजमे को खींच सकता है। जो 61 हिजरी में आया था, जो आज का हुसैन आएगा, तो वो कितनों को खींचेगा? तो ये उसके मुकाबले में सब डिजाइन कर रहे हैं। अब हमारा क्या फर्ज होता है कि हम भी उनके मुकाबले में काम करें। हम अपनी जहन को देखे, उसको के काम को खून चाहिए था, खून दिया। आज भी जहां जरूरत नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर आज ब्रेन चाहिए। मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन कितना स्ट्रेटेजिकल स्ट्रॉन्ग है वक्त के नाम के लिए। कितनी मैं प्लानिंग करता हूं, कितना मैं बड़ा प्लानर हूं, क्या मेरे पास स्ट्रेटेजीज हैं कि जो नई हुकूमत दुनिया की बनेगी उसमें मैं क्या किरदार अदा करूंगा? उसके लिए मेरी एजुकेशन, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोचना, मेरा दुनिया को देखना, दुनिया पर नजर होना, पूरी दुनिया को मैं कैनवस में देख रहा हूं या नहीं देख रहा। दुनिया मेरे आगे खुली हुई किताब है। दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया के मामला, दुनिया की इकोनॉमिक्स, आज दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है। मेरा क्या किरदार है इसके अंदर? आज मैं कितना स्ट्रांग हूं? आज मैं कितना साइबर वर्ल्ड और इस नेटवर्किंग में, इस सिक्योरिटी के अंदर, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोट्स के अंदर मेरा क्या किरदार है? आज मैं अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहा हूं? आज मैं उनको क्या बनाना चाहता हूँ? आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें अपने आप को किस तरह हजरत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलाना चाहती है? वो सीरत के जिसे के वो मशहूर मिसरा के करबला, करबला की मान अगर ज़ैनब ना होती, करबला रह जाती करबला में अगर सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होती, तो आज वो ज़ैनब का किरदार कैसे अदा करना है? उस हुदूदे इलाही में रहते हुए, उस हिजाब में रहते हुए, उस पर्देदारी में रहते हुए, उन सारी चीजों को रखते हुए हम किस तरह इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं? और कौन कौन से जरिए हैं पैगाम पहुंचाने के? कौन सा जरिया है? आज हम पिक्चर मैसेज के जरिए, आज हम स्टोरीज के जरिए, आज हम टेक्स्ट के जरिए, आज हम एनिमेशन के जरिए, आज हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे कर रहे हैं कि उसके अंदर वो मुजाहिदाना सलाहियतें पैदा हों, वो जवान, वो बच्चे पैदा हुए, ये जो शहीद हुए, जो आपके इस मंदिर में भी जितने लोग शहीद हुए, ये उन माओं का कमाल था जिन्होंने इन्हें बड़ा किया है। यानी क्या आज वो आगोश हैं? क्या आज वो माए हैं? या आज वो हमारी बहनें, बेटियां ये सोचती हैं कि कल हमारी आगोश से भी कोई शहीद परवर पैदा होगा? तो ये सवाल है उस माँ की सीरत पर चलने का कि जो मोहम्मद को अपने वक्त के नाम पर कुर्बान कर देती है। तो हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समझना है, ये धोखा है, ये सराब है जो हमारे लिए खींचा जा रहा है मीडिया के जरिए, ये जो हमारे जहन में इल्हा किया जाता है और दुनिया इसी को आगे लेकर आ रही है। यही मुकाबला है आज इमाम हुसैन का, मुकाबला इसी से करना है। मैं आपको तारीखी बता दूं, बातें बताकर चला जाऊं, आप भी सुन जोड़ के चले जाए, लेकिन आज जमाने को अपना पहचानता है, हम किसको पहचाने। एक शहीद का वाकया मैं अक्सर बयान करता हूँ इस माँ की दुनिया से बाहर निकालने के लिए, कि वो 8 साल की जो इराक की जंग थी, उस्ताद ने इस वाकये को बयान किया कि बच्चे स्कूल हाई स्कूल के थे, यूनिवर्सिटी में जाना था और कुछ बच्चे थे, एक बच्चा उनमें बहुत पाक साफ ईंधन उसकी बहुत अच्छी, तो ये सब उसको छेड़ते थे, तो इतने अच्छे हो तो जंग में क्यों नहीं जाते, जंग तो शुरू है, 2 साल हो गए, 4 साल हो चुके थे। तो इसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हाई स्कूल क्रॉस करके अच्छी यूनिवर्सिटी में हूँ और उसके पहले सेमेस्टर में मैं टॉप करूँ, अच्छा GPA लेकर आऊँ और फिर मैं ये छोड़ कर जंग में जाऊँ। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता कल को लोग ये कहें कि इमाम खमैनी के साथ पढ़े लिखे लड़के नहीं थे। वक्त गुजर गया, ये टीचर भी जो है वो चला गया ऑपरेशन पे और बसरा के सामने जो जगह है जहाँ पर वो नहर आरवन दूध आरवन बहती है, वहाँ नीचे माइंस बिछी होती थी और उसका पानी का बहाव बहुत तेज है और जवानों को वहाँ से गुजरना था, तो वो जवानों की सफ़ों को सीधा कर रहा था जो ड्राइवर्स थे, जो लिबास पहने हुए थे ड्राइवर्स का। उसने उस शख्स में देखा कि वो लड़का खड़ा हुआ है, उसको बोला, उसको पहचान किया, उसका नाम उसे पूछा, उसने बोला पुरानी यूनिवर्सिटी चला गया था और वो छोड़ के आया। खुश हुआ, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, पानी में गए, एक माइक फट गई, ये टीचर जख्मी हुआ, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। कहते हैं 2 माह कोमा से उठ के जब आया तो उसने देखा कि उस जवान की तस्वीर लगी हुई है, वो शहीद हो चुका था उस ऑपरेशन में। फिर उसके घर गया, घर वालों को दिलासा दिया और मुबारकबाद दी। घर वालों ने कहा कि जब ये शहीद हुआ तो इसकी एक खूबी थी जो बाहर अमेरिका में रहती थी, वो आई हुई थी, तो उसने कहा कि आपका बेटा बड़ा इंटेलिजेंट था, बहुत पढ़ा लिखा, ये बाहर होता कहीं तो ये PhD करता, साइंटिस्ट बनता, डॉक्टरेट की डिग्री लेता, आपने खामखा इसे मरवा दिया। ये शायद गरीब थे, उन्होंने कहा कि क्या बोलते, खामोश रहे। कहा दूसरे दिन वो गुप्पी वापस आई रोती हुई और कहती है मैंने रात को ख्वाब में बहरोज को देखा और वो हवाओं में परवास कर रहा था, उसने सफ़ेद कलर का गाउन पहना हुआ था जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पहनते हैं, उसने उस गाउन को हटाया, उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था डॉक्टर बहरोज फ्रॉम इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी। ये जो जज्बा है ये माता नहीं दे सकता, ये मैटर नहीं दे सकता, इसके लिए इस वादी में उतरना पड़ता है। ये वादी जो इश्क की वादी है कि जिसका जो है वो किबला इमाम हुसैन के सामने और ये हर दौर पे मौजूद है, इस वादी के हुदूद नहीं है, ये वादी कहीं रुक नहीं जाती, ये वादी अपने आप को वसत के साथ तूलो जमा पे मोहित किए हुए, जिसको भी आना है यहां दावत है। पहली शर्त, अपने खून का बज़्म कर सकते हो, बिस्मिल्लाह। दूसरी शर्त, इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम लखा अल्लाह चाहते हो, खुदा से मुलाकात चाहते हो, ये दूसरी शर्त। या हम अपनी जिंदगी में देखें कि खुदा हमारी जिंदगी में कहां है, हम खुदा से मुलाकात चाहते हैं या नहीं चाहते, खुदा से गुफ्तगू करते हैं या नहीं करते। शब आशूरा या रोज आशूरा, बास असहाब बड़े को मुसरत थे, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, तो कहा ये वक्त मुस्कुराने का नहीं है। कहा क्यों ना हो, हमारे खुदा की मुलाकात में चंद लम्हों का फासला रहा है। लखा अल्लाह, खुदा से मुलाकात, और ये दूसरा अंसर है जाने मोहतरम। वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको गुफ्तगू करूँ, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में अपनी तरबियत करें कि हम खुदा से मुलाकात चाहते हैं नहीं चाहते, और अपनी औलाद की अपनी नस्ल की जो तरबियत कर रहे हैं कि आप उसे खुदा के करीब कर रहे हैं, दुनिया को छू सकते हो तो फिर। अब हर शख्स की दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। हर शख्स अपनी दुनिया में गिरफ्तार है और ये दुनिया उसे परवाज नहीं करने देती, उसे उड़ने नहीं देती। बाहरों पर जाहिर में लगता है कि आदमी बड़ा आजाद है, बड़ा इबादत गुजार है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपनी किसी दुनिया में फंसा हुआ है। इससे निकालना खुद निकालना है, उसे उसे खुद फैसला करना है। बाद एक आलम दीन इस बात पर बुरा मान जाता है कि पोस्टर पर उसका नाम नीचे लिखा है, आपने ऊपर नहीं लिखा। मेरे नाम के आगे आपने आयतुल्लाह नहीं लिखा, अल्लामा नहीं लगाया। ये हमारी दुनिया है, हम इसी वजह में हम इसे बाहर नहीं आने दे रहे। इसी तरह हर शख्स ऐसी है, उसकी कहीं ना कहीं दुनिया है। इस सवाल मेरे जहन में जो वाक़ अभी याद आया, वो आपने बहुत सुना भाई दीन और जाहिर सुना होता है, लोग बाजू वाले में दरख्वास्त करेंगे अगर मतलब कोई वाक्य हुआ है। तो वो शख्स कि जो बसरा का रहने वाला था और बसरा के रहने वाला था और उसकी जो है वो हिकमत की दुकान थी, ये चीज़ें जड़ी बूटियाँ भेजा करता था। वो शख्स उसके पास आया, उनका लिबास उनका हुलिया बसरा का नहीं था। उसने जब देखा उसने कहा आप कहाँ से आए हैं, कौन है? तो उसने कहा आपसे इससे क्या, आप हमें काफूर और सिद्र दे दें, हमें काफूर सिद्र चाहिए। ज़ाहिर आप जानते हैं कि जब कोई जनाजा हो गया, मैयत हो गया, तो तीन पानी पानियों से उसे उसको देना है, काफूर के पानी सिद्र और एक सादे पानी से तो पाक पानी होता है। तो उसने कहा नहीं मैं दे तो दूंगा, लेकिन आप हैं कौन, आपका लहजा यहाँ का नहीं है। उसने बहुत हम वक्त के इमाम के साथ होते हैं और हमारा एक साथी उसका इस्तेमाल हो गया है, तो हम आपकी दुकान पर अब जब हमने इसने इमाम का नाम सुना तो ये उनके पाँव पड़ गया, कहा कि हमें आप मुझे अपने साथ ले जाएं। कहा हमें इजाज़त नहीं, हमें इतनी इजाज़त थी बस। कहा नहीं, बहुत जब इसरार किया उन्होंने कहा हम इतना कर सकते हैं, हम तुम्हें ले सकते हैं, आगे इमाम की मर्जी तुम उससे मुलाकात करें या ना करें। तो अजान मोहतर इसने अपना सामान उठाया, दुकान बंद की और इनके साथ चला, चलते चलते पानी आया, देखा इसने वो दोनों पानी पे चल रहे अभी खड़ा हुआ है। इन्होंने कहा क्यों नहीं चलते, कहा मैं पानी पे कैसे चलूँ, कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो और आखिरी हुज्जत का खुदा को वास्ता करो। इसने वैसे ही किया कि पानी पे ऊपर चलना शुरू किया, चलते चलते पानी में कहीं दरमियान पे एक ऐसी जगह पे आया कि सर पे स्याह बादल आ गए और बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू हुई तो इसका लिबास भीग गया, गीला हुआ। इसे याद आया ये अपनी दुकान की छत पे साबुन सूखने को रख के आया था। जैसे ही इसके जहन में वो आया कि वो मेरे साबुन तो गीले ना हो जाए, ये पानी में डूब गया, हाथ मुँह मारने लगा। उन्होंने मुड़ के देखा, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा जहन कहाँ है? इसने कहा फिर क्या करूँ, कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो मुझक का वास्ता, फिर चला। कहते हैं वो किनारे पर पहुँच गया और खेमा लगा हुआ था, उससे एक नूर निकल रहा, इन्होंने दूर हो गई। भाई बाबा शमसुद्दीन ने किताब उनकी रोजगारान उसकी दफ्तर दुहू में इस वाफे को बयान किया। लोग अक्सर दूसरे वालों किताब का नाम बता रहे हैं, खुद आप सारी बातें तो नहीं बताते हैं लोगों को। आयतुल्लाह शमसुद्दीन आयतुल्लाह उसमें बहजत के खास शागिर्दों में से हैं, उनकी किताब है। तो वो कहते हैं कि मैंने खेमे को देखा, ये दो खेमों में चले गए, खेमों में गए और मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि ये बहुत इसरार कर रहा था, हम इसे ले आए क्या करें। तो इमाम फरमाते हैं कि जिसका जहन साबुन में हो वो हमारे किसी काम का नहीं। उसकी दुकान यही थी, उसका जहन उसके साबुन में था। मेरा भी किसी ना किसी जगह जाने मोहतरम जहन ऐसा हुआ है इमाम की तरफ मुतवज्जे नहीं। हमने भी अपनी दुनिया को पहचान लिया, हर शख्स अपनी दुनिया को पहचान लिया। अगर ये दुनिया हुई हम अपने वक्त के लिए इमाम के लिए कदम नहीं उठा रहे, हमसे नहीं निकला जाएगा, हम रुक जाएंगे। और यही चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बन जाती हैं कि इंसान इमाम के मुकाबले में आ जाता है। चौथी और आखिरी चीज़ इमाम ने जो फरमाया कि खून का वजन करो, لقال لا خدا سے ملاقات چاہتے ہو بلکہ دنیا کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ ہو سکتے ہو، یہ شرط ہے. سارے نیک کام کرے اور امام کے ساتھ نہ ہو، امام کے ساتھ نہ ہو اور آدمی سارے نیک کام کرے تو فائدہ نہیں ہے. امام کا ساتھ بھی دیا، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، امام حسین کا ساتھ بھی دیا، ہم سب کر رہے ہوں، ہمارے قدم جو ہیں وہ فرض کریں کربلا کی طرف ہوں اور راستے میں وقت کا امام مل جائے اور وہ کہے چلو میرے ساتھ کوفہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولا میں تو ابھی کوفہ سے تو آ رہا، مجھے تو تھوڑی تو دیر رہ گئی ہے، میں زیارت کر لوں. یقیناً امام سید الشہداء کی زیارت تو کبھی بھی منع نہیں کریں گے، لیکن اگر امام کہہ رہے ہو فی الحال میرے ساتھ چلو، فی الحال میرے ساتھ چلو، تو کیا ہم چل پائیں گے؟ ہم تو ویسے اتنے ماشاء اللہ مسلمان بھی اتنے اسٹرانگ ہیں اور عزادار بھی اتنے ہیں کہ امام سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. بولے نہیں مولا ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا خدا نہ خاصہ نہ امام، میں تو اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایسی سچویشن میں آ جاؤں کہ جہاں مجھے امام کا ساتھ دینا پڑے، تو کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں تیار ہو پاؤں گا؟ آج مجھ سے مستحد کا جو ہے کوئی فضلہ برداشت نہیں ہوتا، آج مجھے ان سے کلام اور گفتگو برداشت نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ دیا ہے. ہمارے ابا اجداد یہی کیا کرتے تھے، آپ کو نہیں پتا مستحد با بصیرت ہے، وہ اس دنیا کو باطن کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیں اس کی پیروی اور اس کی اطاعت کرنی ہے تاکہ ہم اس معاشرے کے فتنوں میں کامیابی ہو سکے. تو عزیزان محترم، امام کا ساتھ دینا آسان نہیں. جنہوں نے حضرت مسلم کو کوفہ میں چھوڑ دیا وہ کیا امام حسین کا ساتھ دے پائے؟ کیوں؟ کیونکہ امام کا نمائندہ تھا، امام نے اپنے پوری پوری عقل کو بھیجا تھا، اپنے بھائی کو بھیجا، اپنے نمائندے کو بھیجا، اس کا ساتھ دو میرا ساتھ دیا. یعنی امام کا ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سوچنا کہ میں کچھ نہیں کروں زندگی میں اور میں سو کے اٹھوں اور ظہور کا دن ہوگا اور میں امام کا ساتھ دے دوں گا، ممکن نہیں جب تک ان کی نگاہ کرم نہ. لیکن اس ساتھ دینے کو مجھے آج سے پریکٹس کرنا ہے. آج امام کس کے ساتھ ہے؟ آج امام کن تحریکوں کے ساتھ ہے؟ آج امام کس نظام کے ساتھ ہے؟ امام تک کون سا نظام ہے جو لے کے جا رہا ہے؟ امام تک کون سی شخصیتیں ہیں جو لے کے جا رہا ہے؟ یہی کوالٹی ہمیں چیک کرنی ہے کہ ہر وہ شخص، چاہے عالم ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے نوع خان ہو، چاہے لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ امام تک لے کے جا رہا ہے بسم اللہ، لیکن اگر وہ امام تک نہیں لے کے جا رہا تو سمجھ میں پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو بہرحال ہمیں اس پوری ایام میں، ماہ محرم میں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان ایام میں ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں. اس لیے محترم میں چل چوں گے، بہرحال آپ کی آنکھوں کو دم کرنے کے لیے شاید تو بڑے نہیں چاہتے، لیکن بہرحال ذکر انہیں کا ہے کہ جنہوں نے امام کا ساتھ دیا وہ لوگ کٹ گئے، مر گئے، مگر امام کو نہیں چھوڑا. وہ سختیاں برداشت کی، وہ سومتیں برداشت کی، وہ مصیبتیں برداشت کی، مگر امام کو نہیں چھوڑا. اس کی مثال حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا وہ سوال اور امام سجاد کی امامت کا پہلا سوال یہ بتا رہا ہے امام کا ساتھ کتنا مہم ہے. کیا کہا بی بی زینب نے؟ کہا بیٹا سجاد وقت کے امام ہے، کیا خیموں میں چل کے مر جائیں یا پھر خیموں سے باہر نکلیں؟ کتنا سخت سوال ہے امام سجاد کے لیے. کس طرح اجازت دے سید الشہداء اپنی اہل حرم کو کہ غیروں کے سامنے سروں پہ چادریں ہیں، عزیزان محترم ایسا نہیں تھا اس وقت، سروں پہ چادریں ہیں، حجاب ہے، لیکن اغیار کے مجمعے میں پھر نیزوں سے چادریں چھینی جاتی ہیں، وہ مصیبتیں، وہ مشکلیں ہونی ہیں، وہ ہاتھوں میں رسیاں بندھنی ہیں، लेकिन इमाम का साथ दिया। एक लम्हे इस पूरे सफर में कूफा और शाम में कहीं पे भी बीबी ने ये नहीं कहा इमाम सज्जाद से, बेटा कितनी तकलीफें हैं, कितना बर्दाश्त करें, कहीं नहीं कहा। निगाहें इमाम पर है। और उस वक्त फातिमी ने आके आजकल मरीज में खुदा ने शिफा अता फरमाई बयान करते हैं, चंद मकाम ऐसे थे कि जिन मकाम पर बीबी ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को बचाया। वो मकाम इनमें से एक कि जब रोजे 11 मुहर्रम को जब ये कारवां मक्तल के पास से गुजरा और सिर्फ गुजरते हुए इन्हें उन लाशों के पास से गुजारा गया, उन बदनों के पास से जो मुतहर और पाक बदन थे उनके पास से गुजारा गया। और जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उस बदन को देखा जिसकी तन से सर छुपा था, जिसके बदन पर कोई चीज बाकी नहीं थी, जिस पर नेजों और तलवारों के निशान थे और करबला की खाक ने उसे अटा हुआ था, जब उसको देखा इमाम से बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले कि इमाम की रूह परवास कर दी, बीबी ज़ैनब ने अपने आप को सवारी से नीचे गिरा दिया और कहा, यहां तक कि मक्तल के जुमले हैं, या ये मेरा भाई हुसैन है। इससे बढ़कर वो बेटी कि जो अपने बाप के सीने में सोती थी, वो जब उस वक्त बदन को देखती है तो क्या कहती, कहती है भूल जा ये किसका बदन है।